रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम जी महाराज चित्रकूट के आश्रम से अपने परिजनों से माताओं से सबसे मिलने के लिए दर्शन करने के लिए मंदाकिनी नदी के किनारे आए और वहां आकर के बातचीत मामूली बातचीत की, चलो आश्रम में चलो। अब वे आश्रम की तरफ रवाना होते हैं। सब लोग ऋषि मुनि के पीछे माने वशिष्ठ जी के पीछे पीछे रवाना होते हैं। जल थल तकी तकी उतरे वो लोग और ये देखो ये स्थान अच्छा है। कितना बड़ा झुंड था उस आश्रम में, तो जगह कम थी, तो कहा ये स्थान हमारे लिए ठीक है, ये स्थान हमारे लिए ठीक है, ये स्थान हमारे लिए। ऐसे ऐसे जगह जगह के स्थान देखते देखते वे सब आश्रम में पहुंच गए। मंत्री है और ब्राह्मण है, माताजी हैं, गुरु है, सब लोग एक साथ वहां पर पहुंच गए। अब जो यूं रेला आ रहा था ना, तो सबसे पहले गुरुजी आए, तो सीता माता ने सबसे पहले अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, वशिष्ठ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। फिर गुरु पत्नियां आई, ऋषि मुनियों की स्त्रियां आई, तो सीता जी को उन्होंने गोद में ले लिया और बहुत प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरा, सबके आंखों में पानी आया, खूब आशीर्वाद दिया। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, इतना सीता जी ने सबके साथ विनय का व्यवहार किया कि उन लोगों के मुंह से आशीर्वाद के वचन थम ही नहीं रहे थे, खूब आशीर्वाद दिया। अब गुरुजनों के आने के बाद सासुए आई, अपनी सासुओं को देखा, तो सासुओं को देखते ही सीता जी ने नेत्र बंद कर लिए, सहम गई, अरे इन्होंने तो विधवा का वेश पहन रखा है। दम सीता जी ने आंख बंद कर ली, आंख बंद करे झरझर आंसू आए और अपनी सासुओं को देख करके ऐसी लगी, सीता जी को ऐसा लगा कि खूब सारी हंसनिया हो और वो किसी शिकारी के चक्कर में आ गए हो, हंसनिया बैठी हो और शिकारी वहां पर हो तो क्या दशा होती है, ऐसी दशा है। क्योंकि यहां शिकारी तो कौन है, शिकारी तो है विधाता और हंसनी है रानी। अब बिचारी घबरा गई सीता जी। और जब उन माताओं ने माने सासुओं ने सीता जी को देखा तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और जाते उन्होंने सीता जी को अपनी गोद में ले लिया। सीता जी ने भी देखा कि अब भाई जो कुछ विधाता ने दुख दिया है वो तो सहना ही पड़ेगा। सीता जी के नील कमल के समान मोटे मोटे आंखों से यूं टप टप आंसू पड़ने लग गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सासुओं का और सीता का जो मिलना हो रहा था वो चित्रकूट में पहले तो शांति रस था, अब करुणा रस बहने लग गया। तई अवसर करुणा मई छाई, करुणा ही करुणा छा गई। उनको रोते हुए देख करके, सासू बहुओं को देख करके सब लोग रोने लग गए। लागी लागी पग सबन सिय भेटति अति अनुराग, हृदय आसी सही प्रेम बस रही अहु भरी सुहाग। सीता जी ने सब सासुओं के चरणों में प्रणाम किया तो सासुओं ने रोते रोते आशीर्वाद दिया कि देखो सीता जी, हमारा सुहाग तो चला गया लेकिन हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सुहाग सदाई अखंड रहेगा। रही भरी सुहाग, तुम्हारी मांग सुहाग हरदम भरी रहेगी। सीता जी सासू सब लोग जब रो रहे थे तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बैठो भाई, सब बैठ जाओ। बैठन सबई कहो गुरु ज्ञानी, तो यहाँ गुरु महाराज ने उन सबको बैठने के लिए कहा। और फिर देखो कैसे बात चलाई, कहने लगे देखो सुनो राम, ये संसार तो माया से बना हुआ है, दिखता तो है लेकिन है नहीं। कई संसार में ऐसी चीजें दिखती हैं पर मिलती नहीं है। फोटो के अंदर बढ़िया बढ़िया पदार्थ दिखते हैं, बढ़िया फल है, खाने की चीजें हैं, सिनेमा में दिखते हैं, पर पर्दे पर जाकर देखें तो वहां कुछ नहीं। पर्दा केवल कपड़ा है, वहां कुछ नहीं। नदी बहती हुई दिखती है लेकिन वहां पानी नहीं है। आग दिखती हुई दिखती है पर वो आग में कोई जलता नहीं है। ऐसे ये संसार जैसे दिखता है ना वैसा नहीं है, ये माया से बनाया हुआ है। इसमें रहने वाली चीज तो एक परब्रह्म परमात्मा है। संसार की ऐसी गति है राम, इसलिए संसार में कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। जिसमें ये शरीर तो बहुत कच्चा है, शरीर से ज्यादा पक्का तो पत्थर भी होता है, क्योंकि शरीर में एक प्राण होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, एकदम बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो शरीर चला गया ऐसा। तो संसार की सब चीजों में सबसे कच्चा ये शरीर होता है, इसलिए शरीर को लेकर के, किसी के भी शरीर को लेकर के दुखी नहीं होना चाहिए। अतः राम, हम बड़े ज्ञान में डूबते हुए आपको संसार का स्वरूप बताते हुए ये सूचना देना चाहते हैं कि आपके महाराज दशरथ जी देवलोक में चले गए। राम जी महाराज के पिताजी चले गए, चले गए। ये बात सुनकर के राम जी महाराज ने व्यवहार के अंदर बड़ा दुख का अनुभव किया। ओहो, पिताजी के मरने का कारण तो केवल मेरे प्रति स्नेह था और कोई नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो भगवान का जो ये यहाँ रोना है ना, ये अज्ञानियों की तरह रोना नहीं है, मुंह के अंदर रोना नहीं है, ये प्रेम में रोना है। कि रोना प्रेम का है कि ये मोह का है, इसका क्या पता चले हमको, ये अपने को पता नहीं चल सकता। एक ज्ञानी महात्मा है वो भी रोते हैं और एक अज्ञानी आदमी वो भी रोता है। एक लाश पड़ी है उसके पास में महात्मा खड़े हैं वो भी रो रहे हैं, और एक उनके परिवार के लोग हैं वो भी रो रहे हैं, दोनों ही रो रहे हैं। तो दोनों रो रहे हैं तो एक का रोना तो प्रेम के कारण से है, स्नेह के कारण से है, लोक हित के कारण से है, और एक का रोना मोह के कारण से है। ऐसे ही भगवान का जो अभी यहाँ दशरथ जी के लिए रोना हो रहा है, ये रोना केवल प्रेम के कारण से हो रहा है। विलपत लखन सी सब रानी, सीता जी भी रोती हैं, लक्ष्मण जी भी रोते हैं, सब लोग रोने लग गए। और ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं मानो दशरथ जी आज ही मरे हों। भाई दशरथ जी का 12वां कर दिया, 13वां कर दिया, उसके बाद शोक सभा हो वा करके सब काम करके अब यहाँ आए हैं, कि मानो राज अकाजु आजू, आज ही मानो ये मरे हो। फिर मुनिवर ने वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया और कहा कि देखो जब आप किसी भी आदमी की मृत्यु के समाचार सुनो ना तो सबसे पहले जाकर उसको स्नान करना चाहिए, नया धोया हुआ हो और पता चले कि तार आ गया, टेलीफोन आ गया, कोई खत आ गया कि अमुक आपके जो है ये अपने संबंधी और वो मर जाए, तो तत्काल जाकर के स्नान करना चाहिए। तो राम जी महाराज ने स्नान किया और उस दिन कोई जल वगैरह भी नहीं लिया, फल भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। वशिष्ठ जी ने सबको कहा देखो भाई आज राम जी ने कुछ नहीं लिया, अपने को भी कुछ नहीं लेना है, ऐसे रात भर रहे। प्रातःकाल हुआ, राम जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव से कि महाराज आप बताओ मुझे क्या क्या करना है पिता के प्रति। तो वेद के अंदर जो जो विधान है वो सब विधान राम जी महाराज ने किए और राम जी महाराज शुद्ध हो गए। राम जी महाराज तो नित्य शुद्ध है भाई। भे पुनीत पातक तम हरणी, पातक तम तरणी, माने जो कुछ वहां सूतक वगैरह का दोष होता है सुनने का, वो सब सूतक वगैरह का दोष भी समाप्त हो गया, सब प्रकार की वैदिक क्रिया कर दी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनका नाम होता है भगजिन, भगवान का नाम रूपी अग्नि है, वो एक चिंगारी के समान रुई में लग करके सबको भस्म कर देती है और जो सब मंगलों के मूल है, ऐसे भगवान कैसे शुद्ध होते हैं कि जैसे गंगा जी में तीर्थों का आह्वान करने से गंगा जी शुद्ध होती है। अब गंगा जी क्या शुद्ध हो भाई, वो तो दुनिया को शुद्ध करने वाली गंगा जी, तो गंगा जी को शुद्ध करते हैं तीर्थों का नाम लेके, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो तीर्थ शुद्ध होते हैं। गंगा जी क्या शुद्ध होगी, गंगा जी में कहे पुष्कर प्रयाग, तो भाई पुष्कर प्रयाग पवित्र हो गए। ऐसे ही राम जी ने जिन क्रियाओं को किया वो क्रियाएं पवित्र हो गई, दिव्य हो गई, शास्त्र की विधि के अनुसार किया तो पवित्र हो गई। देखो ये मृतक कर्म में, श्राद्ध कर्म में, इनमें शास्त्र को मुख्य रख करके करना चाहिए। महाभारत में कथा आती है कि पितामह भीष्म थे, वो पिता के बड़े भक्त थे। पितामह भीष्म सबको ही मालूम है, पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने विवाह नहीं करवाया। वो जो दासराज की कन्या थी उस कन्या पर उनके पिता मुग्ध हो गए, तो दासराज ने कहा कि देखो हमारी कन्या तो हम आपको दे देंगे परंतु इसका बेटा ही राजगद्दी पर बैठे। तो कहा कि ये तो नहीं होगा, मैंने तो घोषणा कर दी है कि ये जो है देवव्रत राजगद्दी पर बैठेगा, तो ठीक है हम हमारी कन्या नहीं देंगे। भीष्म को पता चला कि मेरे पिताजी उदास रहते हैं तो कोई न कोई विशेष कारण है, तो ढूंढ लिया कारण। तो पितामह भीष्म ने दासराज की कन्या के वहां जाकर उसके पिता से बातचीत की कि मेरे पिताजी यहाँ आते हैं कि आते हैं, और उन्होंने आपकी कन्या के लिए कहा कि कहा है, आपकी क्या शर्त है। ये शर्त है कि तुम ही बाधक हो भाई, उन्होंने तुमको युवराज घोषित कर दिया कि कोई बात नहीं मैं राजा नहीं बनूंगा। अरे तुम राजा नहीं बनोगे तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा कहेगा मैं राजा बनूंगा, परंपरा तो मेरे बेटे मेरी लड़की की परंपरा चलनी चाहिए, फिर तेरा लड़का हमें बोलेगा तो चल मैं शादी नहीं कराऊंगा। पिता को पता चला तो फिर पिता क्या बोलते बेचारे। वो पिता में भीष्म पिता के मरने के बाद श्राद्ध में बैठे अपने पिता के लिए श्राद्ध देने लगे, तो गंगा जी के अंदर से हाथ निकले आया पिताजी का। ब्राह्मणों ने कहा अरे भीष्म तुम तो बड़े पितृभक्त हो, देखो तुम्हारे बाप का हाथ निकले आया। मेरा बाप तो जल करके राख हो गया था, हो गया तो क्या हुआ, वो स्वयं पितृयोनि में आकर देखो तुमसे श्राद्ध मांग रहा है। तो पिता में भीष्म ने कहा अब क्या करूं, शास्त्र में तो लिखा है कि अपने पितरों को श्राद्ध दे ना, वो पिंड दान देओ तो दूब के ऊपर रख करके दे, वहां दूब है दूब पर रख दो। पितरों का मन से स्मरण करके जिस पितर का आप श्राद्ध करते हो उसके नाम से वहां पर पिंड रख दो दूब पर। और यहाँ तो साक्षात तुम्हारे पिता आ गए, आप पिता आ गए तो क्या करोगे? तो पिता को दे दूं कि नहीं, पिता को नहीं देना। क्यों? कि देखो भीष्म पिता में तुम्हारे लिए तो पिताजी आ गए, सबके पिता तो आ नहीं पाएंगे, क्यों? सबके अंदर ऐसी कोई भक्ति है नहीं, कुछ न कुछ पिता का अपराध करते ही है। कभी न कभी जीवन में कोई सामने भी बोल जाता है, कभी बाल चलचलता से भी पिता के मन में थोड़ा कष्ट पहुंचाता ही है, कोई न कोई ऐसा भी होता है। नहीं आए, अब वो प्रकट नहीं होंगे तो दूसरे लोग कहेंगे कि हम कैसे हैं कि हमारे पिताजी तो आए नहीं और पिता में भीष्म के आए थे। देखो ऐसे उनके मन में अपने में कमी रहेगी, तो तुम अपने पिता के हाथ में मत दो, तुम यहां ही दे दो, ये दूब के ऊपर ही रख दो। दूब पर रख दिया, इतने में ही उनके पिता की आकाश से आवाज आई, बेटा भीष्म तुमने दूब के ऊपर जो ये पिंडदान रखा है, शास्त्र की मर्यादा का पालन किया है, मैं बहुत खुश हुआ हूं, मैं बहुत खुश हुआ हूं, इससे मुझे ये पिंड मिल जाएगा। आज मेरे हाथ में तू देता तो मैं इतना खुश नहीं होता। ये सब पितरों के लिए तुमने एक रास्ता खोल दिया, तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। ये बताने के लिए कहा कि करि पितु क्रिया वेद जसी बरनी, जैसा वेदों ने बताया वैसा सब काम किया राम जी महाराज ने अपने पिता के पीछे। कहते वो तो भरत जी ने कर ही दिया था, बारवां तेरवां सब कर दिया, अब सूतक वगैरह हट गया। अब क्या कि भरत जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया तो इनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध भये दुई बासर बीती, दो दिन हो गए और वो शुद्ध हो गए राम जी महाराज। एक दिन तो शाम का और उसके बाद दो दिन, मतलब तीन दिन हो गए। अब गुरु महाराज के पास भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव मैं आपसे कुछ बात कहने के लिए आया हूं। तो बोलो राम क्या बात है? कि देखो अपना अपना घर छोड़ करके सब अयोध्यावासी यहां आ गए, यहां इनके खाने पीने का पूरा प्रबंध नहीं, यहां इनके रहने का पूरा प्रबंध नहीं, कंदमूल फल अम्बु आहारी, इधर उधर के कंदमूल फल खा लो, पत्ते खा लो, जल पी लो। वो घर में जैसे आराम से साग परोठा बनता है वैसा थोड़ी बनता है यहाँ, यहाँ तो ये जंगल के फल फूल खाने पड़ेंगे। तो बेचारे सब बड़े दुखी हो रहे हैं, तो आप जो है विचार कीजिए। सानु जब भरत सचिव सब माता, मैं जब भरत की ओर देखता हूँ और सबसे छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ देखता हूँ और मंत्री की तरफ देखता हूँ, माताओं की तरफ देखता हूँ और पूर्वासियों को देखता हूँ, तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। देखो कितने कष्ट से यहाँ आप लोग रह रहे हो। देखो ये तो सब आए थे राम जी का दर्शन करने के लिए, और यही माताएं कहती थी राम से कि देखो वनवास में ऐसा कष्ट है, ऐसा कष्ट है, ऐसा कष्ट है। राम जी ने कहा कोई कष्ट नहीं है। अब उल्टा हो गया, राम जी को तो ऐसा दिख रहा है कि वनवास में कष्ट पा रहे हैं, और कौशल्या जी की ओर वगैरह कहती हम बड़े सुखी हैं, तुम अयोध्या में कि अयोध्या में बड़े दुखी हैं। कैसी विचित्र बात है। तो कहते हैं अब आप सब लोग अयोध्या पधारो, क्यों? अयोध्या तो हमारी सुनी होगी, आप लोग तो यहाँ आ गए और हमारे महाराज हैं दशरथ जी वो स्वर्ग लोक चले गए। मैंने बहुत जिठाई कर दी है महाराज, मुझे क्षमा करना, अब आपको जैसा उचित लगे वैसा करो। तो वशिष्ठ जी महाराज राम जी की बात सुनकर बहुत खुश हुए, खुश होकर के कहने लगे, धर्म से तु करुणा यतन कसन कहु असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहु विश्राम। हे राम तुम तो धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए आए हो ना, तुम धर्म के सेतु हो, सेतु माने पुल, तुम धर्म को जो है निभाने वाले हो, तुम करुणा के सागर हो, करुणा के सदन हो, करुणा के धाम हो, कैसी बढ़िया बात बोलते हो, दूसरों का कष्ट होगा ये तुम्हारे हृदय में कितनी बढ़िया बात पैदा हुई। लोग दुखित दिन दुहि दरस, आप तो ये कहते हो कि लोग बड़े दुखी हो रहे हैं और हम ये कहते हैं कि ये लोग बड़े दुखी थे। आपको तो ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के दुखी हो गए, हम कहते हैं दुखित, दुखित माने पहले से ही दुखी थे, अयोध्या से बड़े दुखी थे और यहाँ देखी लहू विश्राम, यहाँ इनको विश्राम मिल रहा है। महाराज आपके भी दर्शन होते हैं, चित्रकूट के भी मिलते हैं, चित्रकूट में भी सबसे मिलते हैं, दर्शन करते हैं, इसलिए आप इनको यहीं रहने दीजिए। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहू विश्राम। तो राम जी ने ये वचन सुने और दूसरे भी सब लोगों ने ये वचन सुने। तो पहले ही पहले राम जी के जब वचन सुने ना कि तुम अयोध्या चले जाओ, तो ये वचन सुनने पर सब लोगों के मन में भय पैदा हो गया, अरे राम जी तो जल्दी विदा कर रहे हैं यहाँ। उन लोगों के मन में ऐसी डामाडोल स्थिति हो गई जैसे सागर के अंदर कोई जहाज होता ना, यूं यूं डोलता है, हे अब डूबा, हे अब डूबा, हे अब डूबा, यूं हवा के लोरों से जहाज जैसे समुद्र में डूबते 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 दिखता है, ऐसे राम जी के वचनों से दिखाई देने लगा। परंतु जो ही गुरु महाराज ने कहा ना कि नहीं महाराज देखो राम जी ये पहले से बड़े दुखी है, यहाँ आने पर इनको विश्राम मिल रहा है, ये अपना दुख भूल रहे हैं, आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, ऐसी ऐसी बातें चली तो वो जहाज जैसे उस सागर में यूं ठीक हो गया, वो अच्छी वायु चलने पर ऐसे लोग बड़े खुश हो गए। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनऊ मारुत अनुकूला, पावन पैत्यू काल नहाई, जो बिलो की अग ओग नसाई। उन्होंने वहां पयस्विनी नदी है, खूब बढ़िया जल वाली नदी, उसमें वे त्रिकाल संध्या स्नान करते थे। तीहू काल नहाई माने प्रातः काल और मध्यान्ह काल और सायंकाल, त्रिकाल स्नान करते हैं। देखो त्रिकाल संध्या होती है तो प्रारंभिक संध्या होती है सूर्योदय से पहले, मध्यान्ह की संध्या होती है 10, 10:30, 11 बजे के पहले पहले, और सायंकाल की संध्या होती है वो 4, 5 बजे के आसपास ही, त्रिकाल संध्या होती है, उस समय स्नान करते हैं, तीर्थों में रहते हैं वो, तो उनके सारे पाप नष्ट हो गए, भगवान के बार बार दर्शन करते हैं और दर्शन कर करके आंखों में जल ले ले करके बड़े प्रेम से भगवान से मिलते हैं तो सब उनके पाप दूर हो जाते हैं। ये चित्रकूट कितना सुंदर पर्वत, यहाँ का जंगल कितना पवित्र, सबको सुख देने वाला, यहाँ कोई सुख बाकी नहीं और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, झरने बहते हैं खूब अमृत के समान मीठे मीठे, विटप बेल इत्रिन अगणित जाती, और वहाँ तरह तरह के वृक्ष हैं, लताएं हैं, फल फूल पल्लव खूब है, अच्छी अच्छी बैठने की सुंदर शिलाएं हैं, क्या बताएं उस जंगल की शोभा को तो कह नहीं सकते हैं। तो वे सब लोग उस जंगल की शोभा को देख रहे हैं। जाय बरनी बन छवि के ही पाई, वहां सबसे बड़ी बात ये देखी कि पशु पक्षी वगैरह आपस का बैर छोड़ करके बड़े उमंग के साथ नाच गा रहे हैं और आपस में बात करते हैं। इधर कोल किरात भील ये जो वहां है रहने वाले वनवासी लोग, उनको पता चला कि अयोध्या से बुलाने के लिए राम भरत जी महाराज आए हैं, तो वे सब दौड़े दौड़े सब काम छोड़ करके आए और चित्रकूट के वृक्षों में जो मीठा मीठा शहद था वो शहद दोनों में भर भर करके लाए। इस देव साहब ये शहद लीजिए, ये कंदमूल फल लीजिए, ये लीजिए, ऐसी तरह तरह के फल की सामग्री और शहद की सामग्री लेकर के आए। सबके दहा लाओ हम ले लेंगे, पर एक बात है हम फोकट में नहीं खाएंगे, हम इसका पैसा देंगे। दे ही लोग बहुमोलन ले ही। अच्छा वो लोग क्या करते हैं, है तो ये 1 रुपए की चीज देते 5 रुपया, लो भाई ये हम शायद हमको दे दो ये 5 रुपया ले लो। तो भगवान के रहने का वहां क्या प्रभाव पड़ा है? देखो ये प्रसंग क्यों बताया कि भगवान के रहने का प्रभाव कैसा पड़ता है उन कोल किरातों पर। वो कहते हैं कि फिर तराम दुहाई दे, अरे नहीं राम जी की सौगंध है आपको, यदि आपने हमको ये पैसा दे दिया तो ये बात ठीक नहीं है, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके वे राम जी की दुहाई देते हैं और उनका पैसा फेर देते हैं, लेते नहीं है। और बहुत प्रेम से कहते हैं कि मानत साधु प्रेम पहचानी, हम तो आपको बहुत अच्छा पुरुष मानते हैं, देखो आप कहां से आए, अयोध्या से राम जी को मनाने के लिए आए और आप हमारे प्रेम को नहीं पहचानते हैं महाराज। आओ आप प्रेम को पहचानिए, आप सज्जन पुरुष है ना, इसलिए ये क्या पैसे का मूल्य क्यों करते हैं आप, वस्तु का मूल्य पैसे से क्यों चुकाते हो, आप तो प्रेम पहचानो। देखिए आप लोग तो है बड़े पुण्यवान जो अयोध्या जैसी नगरी में रहते हो, आपके यहाँ भगवान ने जन्म लिया और हम हैं बड़े नीच निषाद बहुत छोटे कुल के, लेकिन कोई राम जी की कृपा हुई आप सब अयोध्या वासियों को हमको यहाँ जंगल में दर्शन हो गए, नहीं तो आपके दर्शन तो बड़े मुश्किल है। देखो राम जी के दर्शन सुगम है लेकिन राम जी के भक्तों के दर्शन बड़े दुर्लभ है, ये क्या पता भगवान की और भगवान के भक्तों की क्या बात है। भगवान तो कहते हैं कि मैं बड़ा सुलभ, मेरे भक्त हैं ये बड़े दुर्लभ भगवान के लिए, और अपने लोग सोचते हैं कि भाई भगवान है वो तो नहीं मिलते और संत तो मिल जाते हैं। अब इनमें कौन क्या बात है तो अपने अपने भावना की बात है। हमारी अगमति दर्श तुम्हारा, हमें तो आपका दर्शन बड़ी मुश्किल से हुआ है, जैसे किसी मरुभूमि में गंगा जी की धारा बहना बड़ा मुश्किल लगता है, ऐसे ही आपकी आपकी जो ये इस प्रकार से कृपा दृष्टि है आपका दर्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। राम जी की कृपा देखिए, हमारे कुल में पैदा हुआ जो निषाद है उसको कितनी आज बढ़ाई दे दी है। बस परिजन प्रजाओ चाहिए जस राजा, जैसे जैसा प्रजा हो वैसे ही राजा हो, यथा राजा तथा प्रजा, ये उल्टा बोलते हैं, यथा प्रजा तथा राजा। आप ये मन में कोई संकोच मत रखिए, लेश मात्र भी आप संकोच मत रखिए, आप केवल हमारा प्रेम देखिए, हम बड़े कृतार्थ हो जाएंगे, आप हमसे कुछ ले लेंगे, हम आपको जो फल तृण अंकुर जो भी देवे आप हमको कृतार्थ कीजिए, आप तो हमारे पाहुन हैं महाराज, और इस वन में आप कब कब आएंगे, हमारे कोई सेवा के योग्य भाग नहीं था लेकिन आपके दर्शन हो गए, हम आपको दे भी क्या सकते हैं बताओ, हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो लकड़ी है और पत्ते हैं बस, लकड़ी से रोटी बना लेते हैं, आटा है रोटी बस बना लिया, ईंधन पात किरात मिताई, हम तो किरात हैं जो ईंधन और पात से मित्रता रखते हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम तो आपकी सबसे बड़ी सेवा यही करते हैं कि आपके कपड़े नहीं चुराएंगे, आपके बासन बसन है इनको हम चुराएंगे नहीं, इसी को ही आप बड़ी सेवा मान लेना महाराज, हम नई सेवा तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो ऐसे महामूर्ख जीव है कि प्राणियों को मारते और अपना पेट भरते हैं, हमारी बुद्धि बड़ी खराब, बड़े कुटिल है, हमारा व्यवहार भी बड़ा खराब, रात दिन हम पाप करते रहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, अब यहीं तक ही है ये कथा, पाप करत निशिवा सर जाई, रात दिन हम पाप करते लेकिन नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई, न तो हमारे कमर पर भी कोई कपड़ा रहता है न पेट हमारा पूरा भरता है। लोग कहते हैं पेट बड़ा पापी है, ये सारे पाप इस पेट के कारण से करने पड़ते हैं, हमारे भगवान के परम सेवक परम भक्त ये कोल की रात भील आदि बोलते हैं कि हम रात दिन पाप करते हैं, उसका यही फल है महाराज, हमको पूरे कपड़े नहीं मिलते और पूरा पेट भी हमारा नहीं भरा जाता। हमारी तो महाराज स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि नहीं जाती, ये जो थोड़ा बहुत आपकी सेवा की जो भावना पैदा हुई है यह रघुनंदन दर्श प्रभाव, बस इसी के लिए ये सारा प्रसंग था, भगवान के दर्शनों का ये प्रभाव है कि आपकी सेवा करने का हमारे मन में भाव पैदा हो गया। सच बताएं अयोध्या वासियों, जब से हमने चित्रकूट में भगवान के श्री चरणों के दर्शन किए हैं, तब से हमारे सारे दुसह दुख मिट गए, हमारे पाप मिट गए, हमारे अंदर सरलता आई, हमारे अंदर बड़ी भगवान की कृपा से अच्छी अच्छी बातें पैदा हुई। नहीं तो उससे पहले तो हम बहुत बड़े भारी पापी थे। ऐसे बोलते बोलते चुप हो गए और वो पूर्ववासी उनकी बातें सुनते सुनते मुग्ध हो गए। अरे कितनी अच्छी बातें बोलते हैं, ये गांव के आदमी है, कितनी अच्छी बात बोलते हैं। इनके भाग्य की सराहना करने लगे कि देखो यदि राम जी को राजगद्दी वहां मिल जाती और ये वरदान नहीं मिलते तो ये तो वन में नहीं आते, वन में नहीं आते तो ऐसे 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 जंगली आदमी पापी आदमियों का उद्धार कैसे होता। तिनके भाग सराहन लागे। और उन लोगों का जो सीताराम जी के चरणों में स्नेह था, उस स्नेह को सुनते हैं देखते हैं तो उनको मन में आनंद आता है। अरे कैसे भोले भाले आदमी, कितने सीधे और कैसा निश्चल प्रेम है, कोई बनावटी बात बोलने वाले नहीं है। उनके स्नेह को देख करके अयोध्या वासियों के मन में आया कि हमारे अंदर ऐसा स्नेह नहीं है। नर नारी निदरई ने निज सुनी कोल भिल्लनी की गिरा, इन कोलों की और भीलों की बात सुन करके अपने मन में जो राम जी के प्रति प्रेम था वो प्रेम उनको कम मालूम दिया और इनके अंदर ज्यादा मालूम दिया। तुलसी कृपा रघुवंश मनी की लोह ले लोका तिरा, अरे लोह है वो भी नौका बनाई जाए, नौका का रूप ले लेती है तो लोह भी तरने लग जाता है। लकड़ी है उसके ऊपर लोह लगा दिया है और नौका बनाई तो भाई वो लोह है डूबने वाला और डुबाने वाला, पर वो लकड़ी के साथ यूं चिपक गया तो वो तारने वाला बन जाता है। ऐसे ही कोल किरात भिल वनवासी लोग है, ये है तो ये बड़े खूंखार, परंतु राम जी का संस्पर्श होने से देखो कितना इनके अंदर प्रेम हो गया। बियरा ही बन चाहूं और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल ज्यो दादुर मोर भये पी न पावस प्रथम। बिचारे अयोध्यावासी बड़े विरह में आए थे, अब वो यहाँ पर विरह वहां विहर करने लग गए। देखो विरह और विहार माने विरह में आए थे, अब देखा आप चित्रकूट में खूब आराम से घूमेंगे, ऐसे ऐसे प्रेमी लोगों से मिले रहेंगे और इनसे हम राम जी की सीता जी की कथा सुनते रहेंगे। लोग खूब आनंदित हुए। जैसे बरसात पहली बरसात होती है उसमें मेंढक फूल जाता है, उसमें मोर है वो यूं यूं नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, ऐसे सब अयोध्या वासी खूब आनंद में वहां पर विचरण करने लगे। और चित्रकूट में उन्होंने वहां पर कई दिन विचार कर लिया, कई दिन यहाँ पर रहना है। जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम
जय सीताराम 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 सीताराम
वर राम चंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाले की
जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय